नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की आबादी 5 अरब हुई, तब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। तब से जनसंख्या के प्रति जो बढ़ रहा है, विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट जिसे हम कहें, इस पे कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ही ये दिवस विशेष करके मनाया जाता है। चाहे विकसित देश हों, चाहे विकासशील देश हों, सभी इस जनसंख्या विस्फोट से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। यदि हम भारत की बात करें तो पूरा देश जानता है, संसार जानता है कि हर वर्ष हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। सचमुच ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। यदि हम देखें तो सारे संसार का जो भूभाग है उसका केवल 2.4% भूभाग ही भारतवर्ष है, लेकिन यहाँ पूरे विश्व की आबादी का 16.7% आबादी हमारे देश में रहता है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसी टू व्हीलर में जिसकी कैपेसिटी केवल 2 बंदों को बैठाने की है, उसमें यदि हम 16-17 लोगों को बैठा दें तो उस टू व्हीलर का क्या हाल होगा, देश का भी क्या हाल होगा, हमें सोचना चाहिए। और यदि संयुक्त राष्ट्र की बात माने, एक रिपोर्ट कहता है कि यदि इसी गति से जनसंख्या विस्फोट होता रहा तो 2028 तक हम चीन को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, अर्थात विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। ये हमारे लिए खुशी का विषय नहीं, लेकिन चिंता का विषय है, समय रहते जागने का विषय है। इसीलिए आज का दिन हमें ये बताता है कि सचमुच इस विषय पर बहुत गहराई से हम सोचें, विचार करें, कुछ निर्णय लें और देश हित में कुछ कार्य करें। तो आइए आज इसी की चर्चा हम दाताजी के साथ करेंगे। स्वागत करते हैं पहले उनका। दाताजी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
दाताजी, इस विस्फोट के बारे में, कहीं भी विस्फोट को पॉजिटिव नहीं माना जाता। विस्फोट होता है तो कुछ ना कुछ वास्तव में कहें कि वो परेशानी का ही सबब बनता है। जनसंख्या विस्फोट पूरे विश्व के लिए तो परेशानी का विषय है ही, लेकिन खास करके भारत के लिए, हमारे देश के लिए परेशानी का विषय है।
हाँ, ये तो बम विस्फोट से भी ज्यादा विस्फोटक है
जी। वो शायद एक हाथ मार देता, ये धीरे धीरे मार रहा है।
और ये कैसी मार है कि जिसमें पर्यावरण बिगड़ता है, जिसमें अनेक समस्याओं को जन्म होता है। एक ऐसा परिवार जो छोटा हो, मान लो 4-5 सदस्यों का परिवार है, उसमें काफी सुख शांति, अपनापन, प्रेम रह सकता है। वही परिवार यदि 10 का हो जाए तो रोज लड़ाई झगड़ा होगा, माँ भी परेशान रहेगी, उसको इतनों का भोजन बनाना भी बहुत भारी रहेगा, वो किसे संभाले, किसे छोड़े, किसको पढ़ाए, किसको न पढ़ाए, फिर शादियां करना, फिर कर्ज लेना। तो वास्तव में समस्याओं का अंबार लग जाता है इस जनसंख्या वृद्धि से। तो आज सभी लोग बहुत शिक्षित हो चुके हैं और सभी को अच्छी तरह सोचना चाहिए कि जनसंख्या में, जो भारत में विशेष रूप से तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उसको अभी कंट्रोल किया जाए। ये हम सबका एक परम कर्तव्य है। और अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक प्रभु प्लानिंग भी है, वो कंट्रोल कर देगा। इसलिए अच्छा है कि हम इसको कंट्रोल करें, देश को सुखी बनाएं। मैं तो ये कहूंगा राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ रही है, देखिए बेरोजगारी बढ़ती है, स्कूल बढ़ाए जा रहे हैं, कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी कमी पड़ती रहती है क्योंकि जनसंख्या बहुत हो जाती है। उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, निश्चित रूप से बाग कटे, खेतों को फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बनाया गया, हाँ वहाँ पर बस्ती बसाई गई, नदियों के किनारे बस्ती बसी, सागर को सुखाकर लोगों ने रहना शुरू किया। तो एक तरह से पर्यावरण पर भी असर पड़ा और ये जो हमारी भूमि, ये जो खेती के लिए थी बहुत ज्यादा, वो कम रह गई, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी तो खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए। यद्यपि हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने बहुत बहुत रिसर्च कर ली, हमारे देश में अन्न जो बहुत कम पैदा होता था, अब भंडार यहाँ भरपूर हैं, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी खेती की जो जमीन है वो तो कम होती जा रही। जहां तक हो कुछ नियम बने, मैं तो कहूंगा हमें भी इस संदर्भ में चीन को फॉलो अवश्य करना चाहिए, वहां बहुत अच्छे अच्छे नियम आजकल बन गए हैं। पहले दो बच्चों का प्रावधान था, अब उन्होंने एक का ही कर दिया ताकि जल्दी वो उसको कंट्रोल करें। मैं सोचता हूं हमारे भारत में भी कुछ कर दें। मुझे एक गुड आइडिया आ रहा है तो मनोरंजक आइडिया, लेकिन जिसको एक बच्चा हो उसको सबसे पहले नौकरी मिले, जिसको दो हो उसका सेकेंड नंबर हो
जी, और जिसका हो ही ना
उसको तो मालिक बना दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए पूरा, क्योंकि उसका अधिकारी कोई है नहीं। तो मतलब कुछ सरकार की ओर से भी अच्छे नियम बने और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ अच्छी धारणाएं मनुष्य के मन में हो, माताओं के मन में हो, ताकि उन्हें ये हो कि ये बहुत सारी जो संतानें हैं ये केवल प्रभु देन नहीं, इनके साथ समस्याएं भी आ जाती हैं।
बिल्कुल, मुझे लगता है भ्रता जी कि शायद कई बार कुछ ऐसी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं भी हैं जिसके कारण लोग ये मानते रहे हैं कि ईश्वर ही हमें संतान देता है, तो जब तक वो देता रहे तब तक उसे ग्रहण करते रहो। शायद ये भी एक मान्यता जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती जा रही है।
बहुत परिवारों में इसलिए पूरी टीम हो गई है क्रिकेट की, एक के परिवार में तो 13 थे, मैंने कहा आपने तो शायद उसमें तो 11 ही होते हैं ना, तो मैनेजर भी सेट कर दिया और रेफरी भी, ताकि किसी की कमी ना पड़े। तो इसमें समस्याएं तो बढ़ेंगी ना
जी।
अब देखिए जितनी ज्यादा संतान है, पहली तो ये कि दो तीन संतानों के बाद जो संतान उत्पन्न होंगी, ज्यादा चार के बाद मैं कहूँ, वो कमजोर होंगी, हेल्थ वाइज भी बुद्धि वाइज भी वो बिल्कुल कमजोर होंगी। उनके चरित्र पर, उनकी हेल्थ पर, उनके ब्रेन पर इस चीज का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि हमारे देश की करोड़ों संतानें चरित्रहीन हों, वो स्वास्थ्य से बहुत कमजोर हों, बुद्धि का लेवल उनका बहुत छोटा हो, तो देश विकास नहीं कर पाएगा, बल्कि उन्हें संभालने के लिए और एनर्जी ज्यादा लगेगी।
वैसे विज्ञान भी ये कहता है भ्राता जी कि जैसे जैसे माताएं संतान उत्पत्ति करती हैं तो हर संतान के बाद प्राणिक शक्ति उनकी कम होती चली जाती है, जिससे कि जो बच्चे आगे पैदा होते हैं वो कमजोर पैदा होते हैं, ये माना ही गया है। माता भी मतलब जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। भ्राता जी मैं एक सर्वे देख रहा था, 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत की जो आबादी थी लगभग 23 करोड़ 84 लाख के करीब थी, और वो आज हम देख रहे हैं 21वीं सदी में जब हम पहुंच गए हैं तो लगभग 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गई,
पूरा 1 अरब प्लस हो गया।
तो क्यों, मतलब समझ में नहीं आता 100 साल में ही ऐसा क्या कारण हुआ कि इतनी तेजी से जनसंख्या भारत में बढ़ी है, क्या लगता है आपको?
यही माने जाएंगे कि मनुष्य को उस तरह की इच्छाएं पैदा होती रही, देश में गुप्त रूप का प्रचार भी रहा कि हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमारी सेनाएं बहुत ज्यादा हों, हम बहुत सशक्त हों, कोई विदेशी हम पर हावी न हो सके, ऐसी भी कई भावनाएं लोगों के मन में अंदर ही अंदर चलती रही। लेकिन समय के अनुसार ही संसार की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। कभी जब हम छोटे थे तो किताबों में हमें अब तक याद है संसार की जनसंख्या 2 अरब है, ऐसा हम पढ़ा करते थे। ये बात है 55 के आसपास की
जी।
और अब तो हम जानते हैं 7 अरब तक पहुंचने को है। तो सारे संसार में ये हुआ है, पहले मौतें बहुत होती थी, बीमारियां बहुत होती थी, मेडिकल साइंस ने भी बहुत अपना विकास किया, मेडिकल का प्रचार भी बहुत हुआ, हेल्थ की अवेयरनेस भी बहुत हुई, तो हेल्थ का मनुष्य ध्यान भी रखने लगा, कैसा भोजन उसे खाना इसकी भी अवेयरनेस बहुत दी गई, तो मनुष्य जीता भी बहुत रहा। अब देखिए 80 साल 85 साल तक मनुष्य जी रहा है, 90 साल तक जीता है, भले उसे कष्ट भी बहुत होता है, बीमारियां लग जाती हैं, उसको कोई ठीक कराने वाला भी नहीं होता क्योंकि धन नहीं होता इतना ज्यादा, तो आयु भी बहुत बढ़ी
जी,
हेल्थ भी अच्छी हुई किसी न किसी तरह से, तो दर कम हो गई।
लड़कों की चाहना रही है कि हमारे घर में पुत्र उत्पत्ति हो, और जब तक पुत्र नहीं आया तब तक वो प्रयास जारी रखा गया। इस विषय में क्या कहेंगे, आज के दौर में क्या ये ठीक है कि पुत्र की कामना के लिए हम संतान उत्पत्ति करते हैं?
देखिए पुत्र की कामना तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति सोचता है उसको कोई लड़का हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे परिवार भी आते हैं जिसको 5 कन्याएं थी, अब 5ों की शादी हो गई, पति पत्नी दोनों घर में रह गए, दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब वो सोच रहे हैं किसी लड़की को उसके पति के सहित परिवार सहित अपने घर में बसा लिया जाए, तो मनुष्य को एक प्रैक्टिकल परेशानी तो होती है, लड़का एक भी ना हो। यद्यपि आजकल दूसरी परेशानियां हैं कि 5 लड़के हैं और सब चले गए और कोई भी माँ बाप
वृद्धाश्रम में भी छोड़ दिया,
रख नहीं रहा है, रख रहे हैं तो उनको सुखी नहीं रख रहे हैं।
तो मैं बात वही कह रहा था प्रताप जी, क्या अब के दौर में किसी सदी में अब लड़के लड़कियों में अब भेद करना अब ठीक नहीं लगता, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है?
अब यही है कि उस मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है। ठीक है, बुढ़ापे की बात रही, उसका भी साधन बन जाता है, जैसे कई लड़कियां अपने परिवार सहित माँ बाप के पास आती हैं, या उनके घर बहुत अच्छे हैं तो माँ बाप को भी ले आती हैं अपने घर, ऐसे बहुत सारी हमने देखे हैं केसेज हमारे यहाँ ही हुए हैं। तो अब ये वास्तव में समय का ही एक डिमांड है कि इसमें कुछ भी अंतर न रखा जाए, क्योंकि दोनों ही लड़के और लड़कियां, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, पॉलिटिक्स का फील्ड हो, हर एक में वो सब बराबर की भूमिका निभा रही हैं। और कहीं किसी को ऐसा नहीं लगता कि एक डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी कोई लेडी है तो वहां कुछ कमजोरी है, बल्कि और एफिशिएंसी नजर आती है कई चीजों में, वो आगे दिखाई देती हैं पुरुषों से, क्योंकि शिक्षा बहुत बढ़ चुकी है और अब देश और तरह से प्रगति कर रहा है। तो इस मान्यता को अब समाप्त कर देना चाहिए और एक नियम बना देना चाहिए, भाई इतनी संतान होने के बाद बस अब बंद। तो नियम तो बनाने पड़ेंगे सरकार की ओर से भी, समाज की ओर से भी।
बिल्कुल व्रत जी, एक विशेष चीज की चलिए, क्या क्या उपाय हो सकते हैं? अब हमने देखा कि दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है, जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी हर क्षेत्र में, चाहे आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, हर प्रकार से हम देख रहे हैं समस्याएं हैं, कारण भी आपने कई गिनाए, क्या क्या उपाय ठोस किए जा सकते हैं ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें?
जनसंख्या का विस्फोट तो नेचुरली बहुत एक चिंता का विषय है, लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारे बच्चे युवक जो बहुत एजुकेटेड हो गए, वो काम भी बहुत अच्छे अच्छे करने लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने लगे, अच्छे अच्छे इंजीनियर और साइंटिस्ट बन गए, विदेशों में भी जाके भारत का नाम रोशन करने लगे। लेकिन एक वही बात है कि जब जनसंख्या बढ़ी तो समस्याएं बढ़ी, अनेक समस्याएं बढ़ी और ज्यादा समस्याएं बढ़ी मानसिक लेवल पर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं रहा, भक्ति भी उस लेवल पर पहुंच गई कि कुछ चाहिए तो भक्ति कर लो, गुरु से छोटी सी कामना पूर्ण हो गई वही हमारे लिए तो भगवान है, मनोकामना उसने पूरी कर दी अपनी सिद्धियों के द्वारा, दैट्स ऑल। तो अध्यात्म का अभाव भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो इसको रोकने के लिए सरकारों को भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, जैसे
कई ठोस नियम बने थे, मैं आपके संज्ञान में और दर्शकों के संज्ञान में देना चाहूंगा कि भारत ही पहला ऐसा देश रहा विश्व का जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया 1952 में, जबकि शायद किसी भी देश में इसकी चर्चा नहीं थी, और 2000 में भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई है जिसमें लगभग 150 ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर इसे कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, ये मुख्य बात।
सफलता इसलिए नहीं मिल रही कि मनुष्य जो है, जिसकी वो संतानें हैं, वो इसको कहीं ना कहीं अस्वीकार कर रहा है। जैसे मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी लगी थी, तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग का काम जबरदस्ती करवाया था, तो हमारे गांव में भी हुआ था, हम तो यहाँ थे, तो लोग छुप गए थे, खेतों में चले गए थे, रात को गन्ने के खेतों में जाके छुप गए थे, ऐसा भय पैदा हो गया था, फिर भी जबरदस्ती उसको कराया गया था। अब जबरदस्ती कराया गया, ऑपरेशन हुए, किसी को उसके बाद कमर दर्द रहने लगी, किसी को पेट खराब हो गए, तो एक ऐसा वातावरण बना कि नहीं, ये नहीं करना है, तो एक जबरदस्ती हुआ और एक उसके दुष्परिणाम बहुत आए। तो लोगों ने जैसे फैमिली प्लानिंग का भी जो एक सिद्धांत था कि फैमिली प्लानिंग का जो एक केंद्र होता है उसे चार केस एक साल में तो अवश्य देने ही पड़ते हैं, खर्च भी उस पर हो रहा था, लेकिन लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। एक तो इसका कारण ये हुआ, फिर जो फैमिली प्लानिंग के जिम्मेदार अधिकारी या उसके आगे चलो सेक्रेटरी या उसके आगे चलो मंत्रीगण, वो सबके भी तो पीछे लंबी लाइन थी ना, अभी लोग कहते थे कि भाई पहले तुम करो
जी,
तो एक मोरली भी इसको
मतलब जो उच्च पदों पे थे उन लोगों को पहले ये एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए
था। इसलिए जो उच्च पदों पर हैं, जो उस कार्य में जिम्मेदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी ऊपर से लेके नीचे तक लोग हैं उनके लिए नियम बने, जो सरकारी नौकरियों में हैं उनके लिए नियम बने। जैसे मैं हंसी में पहले कह रहा था भाई एक बच्चा है तो ऐसे, जैसे चाइना में तो बहुत ही कड़ा प्रतिबंध कर दिया कि दो अगर हो गए तो शायद उनकी सैलरी आधी कर दी जाए, कुछ है बहुत अच्छे नियम बनाए, केवल जुड़वा दो हो जाए तो माफ है, बाकी दो बच्चे पैदा किए तो माना उनपे काफी प्रतिबंध रहेंगे, कई उनकी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। तो भले ही लोगों को थोड़ा समय तो ये भारी लगता है कि हमारी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है,
लेकिन राष्ट्रहित में यदि किया जाए
वही कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने समाज को कि राष्ट्रहित में आप ऐसा करो। खैर हमारे यहाँ एक बच्चे की तो बात नहीं पर दो और तीन, इसका प्रावधान भी अगर कर दिया जाए तो माता पिता संतुष्ट भी रहेंगे कि उनको तीन हो गए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल इस पे बैन लग जाए और अगर संतान उत्पत्ति होती है तो वैसे ही कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, वैसा ही नियम बन जाए और उसको कड़ाई से पालन किया जाए, लेकिन समाज को इसके लिए एजुकेट किया जाए। मैं देखता हूं आजकल गांव-गांव में भिन्न भिन्न तरह की एजुकेशन लोग देते हैं, किसी को कुछ प्रचार करना तो वैन ले जाते हैं गांव में, लाउड स्पीकर लगा होता है और प्रचार करते रहते हैं, इलेक्शन भी आता है तो कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर अच्छा प्रचार होता रहता है। इसी तरह इस चीज को भी महत्व देकर परिवार वालों को, गांव वालों को एजुकेट किया जाए। हम तो देखते हैं हमारे यहाँ मजदूरी करने आते हैं, यहीं के आदिवासी भी उनमें से बहुत हैं, गरीब लोग भी बहुत हैं, अब उनके पीछे लंबी लंबी लाइन है, किसी के पांच हैं, किसी को सात हैं, किसी को आठ हैं। अच्छा हो क्या रहा है कि जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए अभी स्कूल में तो कहां उन्हें भेजेंगे, उनके वहां स्कूल भी नहीं है और हैं भी तो उसमें अच्छे बच्चों को लिया जाता है, आजकल स्कूल भी तो स्टैंडर्ड के हो गए ना, न उनके पास पहनने के अच्छे कपड़े हैं, उनकी शिकल भी ऐसी है, अकल भी ऐसी है।
शायद दादाजी एक जो मैं 2000 में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात थी उसमें सरकार ने एक चीज ये भी किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधन बढ़ाए जाए, क्योंकि शायद ग्रामीणों के लिए मनोरंजन के और कोई साधन है नहीं, तो शायद वो इसे ही एक मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकली भी हैं, तो मैं वही बात कह रहा था कि वो मजदूरों के बच्चे फिर क्या करते हैं, मान लो उनको छह बच्चे हैं अभी पढ़ाएंगे तो वो उनको नहीं, तो बस थोड़े से बड़े हुए ना सात आठ साल के उनको भी अपने साथ लगा देते हैं मजदूरी में, थोड़ा थोड़ा काम तुम भी करो, चलो हमें 150 रुपए मिलते हैं भाई, हमारे बच्चों को 50 दे देना, तो उनको लगा देते हैं। इससे क्या होता है न तो वो कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं और अगर उन्हें कहीं से बुराई मिल गई तो वो उसको तत्काल ग्रहण कर लेते हैं और उसका परिणाम फिर आने वाली पीढ़ियों पर बहुत खराब होता है। इसलिए इन चीजों को भी ठीक करना आवश्यक है, तो एक विशाल आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है।
जी सरकार तो चलिए जैसे मैं कह रहा था कि 52 से ही जागरूक है, लगातार प्रयास कर रही है, कई ऐसे एनजीओज हैं जो कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है सभी बड़े शहरों में, कस्बों में, बड़े बड़े गांवों तक इनकी पहुंच है इस विश्वविद्यालय की, तो क्या ब्रह्मा कुमारीज भी कुछ विशेष अभियान या जागरूकता के लिए प्रयास कर रही है जिससे कि जनसंख्या के इस विस्फोट को रोका जा सके?
देखिए हमारे यहाँ तो नियम ही है ब्रह्मचर्य, हमारे यहाँ तो इसको बहुत ही मतलब नेचुरल रूप से स्वेच्छा से लोग अपने जीवन में धारण करते हैं, और हमारे यहाँ लाखों कपिल हैं जिनको किसी को एक बच्चा हुआ, किसी को दो हुआ और उनको ईश्वरीय अनुभूति हो गई और तत्काल उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली, बस वहीं सब कुछ उन्होंने रोक दिया। इसको कई लोग हमारे यहाँ बुरा भी मानते हैं समाज में कि भाई देखो ये वहां गए हैं तो एक ही बच्चे पे रुक गए बस, या दो ही हुए हैं दो से क्या काम चलेगा, एक को कुछ हो जाए तो चार पांच तो होने ही चाहिए, फलाने को इतने हैं तुमको इतने कम कैसे, अच्छे तुम ज्ञान मार्ग पे चले हो, अच्छा भगवान को मिलना था बूढ़े होके मिलते अभी क्यों मिल रहे हो, तो ये सब बातें सुननी भी पड़ती हैं। लेकिन हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में कार्यरत है क्योंकि परमात्म अनुभूति के लिए प्योरिटी का होना परम आवश्यक है। उसके बिना कोई परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, उसके बिना कोई आत्मशुद्धि की ओर नहीं बढ़ सकता, उसके बिना हम अपने को सशक्त नहीं बना सकते। और सत्य तो यही है कि प्योरिटी ही देश के लिए सबसे बड़ी शक्ति है, यही सबसे बड़ा चरित्र है। हमारे देश में जब बहुत सारे लोग पवित्र हो जाएंगे तो सचमुच ये देश स्वर्ग बन जाएगा। पावर ऑफ प्योरिटी को लोग समझते नहीं है, क्योंकि सारा संसार इन विषय वासनाओं के गर्त में डूबा जा रहा है ना, इसलिए उसको इन चीजों का महत्व नहीं। लेकिन हम एजुकेट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो युवक भी बहुत आ रहे हैं। हमारे यहाँ युवकों की आने वालों की संख्या कई लाख हो चुकी है,
और वो भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वेच्छा
से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो सोचते हैं हमें तो स्वामी विवेकानंद की तरह बहुत सशक्त बनना है, हमें तो अपने विचारों को बहुत महान करना है, या जिन राहों पर और गृहस्थी चल रहे हैं, सारा समाज चल रहा है, हमें उससे हटकर अपना एक मार्ग बनाना है, तो ऐसे बहुत सारे युवक स्वेच्छा से, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो देखिए, एक गांव से अगर 10 लोग चलते हैं, 20 चलते हैं, 10 तो मैंने कम से कम कहा, 20 30 40 कहीं 50 चलते हैं, तो वहां जनसंख्या की वृद्धि में एकदम रुकावट आती है ना, रुक जाती है वो आगे बढ़ने से। किसी शहर में, हमारे यहाँ शहर में अगर 1000 लोग हमारे यहाँ आते हैं और ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं, तो जनसंख्या जो तीव्र गति से वो भी बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी रोक दिया है।
तो क्या भ्रते जी, इसी हम ब्रह्मचर्य को भी, जैसे हम एक उपाय ढूंढ रहे थे कि जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जाए, तो क्या एक उपाय ये भी हो सकता है कि लोग ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और इस विस्फोट से देश को बचाएं?
मैं तो यही सोच रहा हूँ, जैसे हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और दिला रहे हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, सरकार की ओर से भी अगर इसको हाईलाइट कर दिया जाए कि भाई जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं वो अवश्य करें, या एक सर्टेन आयु के बाद, जैसे भारत में था पहले 4 आश्रम, 50 साल की आयु हुई बस गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ
जी।
तो ऐसे ही सरकार की ओर से इन चीजों को जरा एनकरेज किया जाए, एजुकेट किया जाए, हो सके तो पाठ्यक्रम में बचपन से इसके महत्व को दर्शाया जाए। केवल ये नहीं कि जनसंख्या वृद्धि ना हो, ये करो वो करो, लेकिन ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी चीज है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए। जो एजुकेशन आज समाप्त हो गई है हमारे यहाँ से, तो बच्चे ही, उनमें से अगर 100 बच्चे हैं तो 20 अवश्य उस चीज को लाइक करेंगे और उसके महत्व को समझकर अपने जीवन को बहुत संयमित कर लेंगे। तो हम लोग भी इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो परमात्मा के पास तो एक प्लान है, वो तो ऐसा फैमिली प्लानिंग करने जा रहा है, ये मैं भविष्यवाणी कर दूं, इसको भविष्यवाणी कहें या भगवान की प्लानिंग का सबको समाचार बता दूं कि ये होने जा रहा है, ऐसी प्लानिंग कि एक युगल को 2 ही बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की, बिल्कुल ऐसा सुंदर बैलेंस रहेगा, जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। और एक और बात कि अब जो ये 7 अरब की जनसंख्या पहुंचने वाली है, अब इसमें एकदम से गिरावट आएगी, सतयुग की शुरुआत होगी 9 लाख पॉपुलेशन से, तो ये अरबों की जनसंख्या एकदम 9 लाख पे परिवर्तित होकर आ जाएगी। ये समय ऐसा तेजी से हमारे सामने आ रहा है, जनसंख्या स्वयं में ही एक विस्फोट कर देगी, प्रकृति में भी एक विस्फोट हो जाएगा, और जो अब तक छोटी मोटी वार चल रही हैं वो भी एक भयानक रूप ले लेगी, और इस सब से ये जनसंख्या एकदम डाउन होगी और फिर से संसार सुखी हो जाएगा।
चलिए, ईश्वरीय जो प्लानिंग है भ्राता जी, वो आपसे जानेंगे हम अवश्य, और यदि ईश्वर की प्लानिंग है तो निश्चित रूप से अच्छी,
कोई नहीं रोक सकता, वो अच्छी होगी।
जी जी, क्योंकि मनुष्य तो बहुत प्रयास कर रहा है, सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, और एक अच्छी बात आपने कह दी कि ईश्वर के पास भी कुछ प्लानिंग है, जिससे कि सहज रूप से ये फैमिली प्लानिंग हो जाएगी, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है नियंत्रित हो जाएगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए व्रता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मुझे एक कथा याद आ रही है, एक राजा जो बहुत शिव भक्त थे, शिवरात्रि का पर्व आने वाला था, उन्होंने सोचा कि इस बार हम क्या करें, उन्होंने पूरी प्रजा में अनाउंस करवा दिया कि इस बार जो हमारा शिवालय है उसमें हरेक एक एक लोटा दूध चढ़ाएगा। अब हरेक ने ये सोचा कि मैं यदि एक लोटा पानी चढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ता है, और हरेक ने यही सोचा। अब जब देखा गया कि शिवालय दूध से भरा हुआ होगा, लेकिन शिवालय दूध से नहीं लेकिन पानी से भरा हुआ था। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हरेक को व्यक्तिगत प्रयास करने की भी आवश्यकता है। हम दूसरों को ना देखें। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति यही है कि हम राष्ट्र की समस्या को दूर करने में अपना योगदान दें। यदि हम सच्चे देशभक्त हैं तो सचमुच इस विषय पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए कि जनसंख्या के विस्फोट को रोकने में मैं भी मददगार साबित हूं। जब कभी हम पे विपत्ति आती है, इराक में आप फंस गए थे, आपने राष्ट्र की ओर देखा और राष्ट्र ने आपकी रक्षा की। जब काबुल में भी हमारा विमान ले जाया गया था, तब भी हमने राष्ट्र की ओर देखा और भले हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी राष्ट्र ने एक होकर आपके प्राणों की रक्षा की। जब राष्ट्र आपके लिए सोचता है तो क्या आपको राष्ट्र के लिए नहीं सोचना चाहिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की सभी समस्याओं को हम निर्मूल कर पाएंगे। नमस्कार।